जनजातीय विद्रोह भारत के विभिन्न भागों के बहुत बड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में कई छापामार लड़ाइयां लड़ीं। वे आपस में संगठित हुए और उन्होंने अत्यंत जुझारू संघर्ष किया और असीम शौर्य व बलिदान का परिचय दिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इनका दमन करने में क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दीं और उन पर पाशविक अत्याचार किए। भ्रष्टाचार और अत्याचार के हथियारों से लैस औपनिवेशिक शासन ने जब आदिवासियों के इलाकों में घुसपैठ की तो उनमें घोर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक ही था। आम तौर पर आदिवासी से समाज से अपने को अलग रखते थे, लेकिन ब्रिटिश ने उनको पूरी तरह औपनिवेशिक घेरे के भीतर खींच लिया। राज ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दे दिया और लगान की नई प्रणाली लागू की। आदिवासियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं पर नए तरह के कर भी लगाए गए। यही नहीं, आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ को भी राज ने बढ़ावा दिया। इसके साथ ही उनके बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वालों के ऐसे वर्ग को भी इन पर लादा गया जो बिचौलियों का काम करता था। आदिवासियों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और शोषण के भंवर में खींच लाने के काम में औपनिवेशिक शासकों ने इन बिचौलियों का जमकर इस्तेमाल किया। ये बाहरी बिचौलिये धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमाते गए और उन्होंने आदिवासियों को कर्ज के जटिल जाल में उलझा फंसा दिया। आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों और औपनिवेशिक राज की घुसपैठ ने उनकी पूरी राज सामाजिक व्यवस्था को ही उलट पलट दिया। उनकी जमीन उनके हाथ से निकलती गई और वे धीरे धीरे किसान से खेत मजदूर होते चले गए। जंगलों से उनके गहरे रिश्ते को भी औपनिवेशिक हमले ने तोड़ दिए। इसके पहले वे भोजन, ईंधन और पशुओं का चारा आदि जंगलों से जुटाते थे, जहां उनका जीवन पूरी तरह स्वच्छंद था। खेती के उनके अपने तरीके थे। वे जगह बदल बदल कर झूम और पंडू विधियों से खेती करते थे, यानी जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए हैं तो वे जंगल साफ कर खेती के लिए नई जमीन तैयार कर लेते थे। लेकिन औपनिवेशिक राज ने जब सब कुछ बदल दिया और जंगली भूमि, वन उत्पादों व गांवों की जमीन के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए, जगह बदल कर की जाने वाली खेती पर तो पूरी तरह रोक लगा दी गई। पुलिस और अन्य छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, शोषण और जबरन उगाही ने आदिवासियों का जीना दूभर कर दिया। लगान वसूलने वाले लोग और महाजनों जैसे सरकारी बिचौलिए और दलाल इन आदिवासियों का शोषण तो करते ही थे, उनसे जबरन बेगार भी कराते थे। इसके फलस्वरूप आदिवासियों में असंतोष गहराता गया और उनके हर विद्रोह का एकमात्र कारण यही था। आदिवासियों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर संघर्ष किया, जिनमें हजारों आदिवासी एकजुट होकर लड़े। कई बार तो पूरा कबीला और आसपास के सभी गांवों के आदिवासी संगठित हुए। कुछ मौक़ों पर तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया। औपनिवेशिक घुसपैठ और व्यापारियों, महाजनों व लगान वसूलने वालों के तिहरे शासन ने पूरे आदिवासी समाज की लय और ताल ही तोड़ दी। हालांकि यह हमला कहीं बहुत तगड़ा रहा तो कहीं थोड़ा कम, लेकिन इसने उनको बुरी तरह झकझोरा। यहाँ तक कि उनके कबीलाई सरदार और मुखिया भी शोषण से बच नहीं सके, इसलिए आम आदिवासी के साथ उनके सरदार और मुखिया भी विदेशियों को खदेड़ने के लिए एकजुट हुए। दरअसल आदिवासियों के विद्रोहों में उनके जातीय हित ही बुनियादी कारण रहे। उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर और आदिवासी पहचान जैसे संथाल, कोल, मुडा, आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया, उनकी एक जुटता की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कभी भी दूसरे आदिवासियों पर हमला नहीं किया। एक खास बात और थी कि सभी बाहरी लोगों को वे दुश्मन नहीं मानते थे। बाहर से उनके इलाके में आकर बसे ऐसे लोगों पर आमतौर पर वे हमला नहीं करते थे जो गरीब होते थे और आदिवासी गांवों की अर्थव्यवस्था में जिनकी भूमिका सहायक थी या जिन लोगों ने आदिवासियों से गहरे सामाजिक रिश्ते बना लिए थे। इन लोगों ने ग्वाले, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, धोबी, नाई, ढोलची, बाबरची, मजदूर और पैसे वाले बाहरी लोगों के यहाँ काम करने वाले घरेलू नौकर शामिल थे। ये लोग न सिर्फ आदिवासियों के हमले से बचते रहे बल्कि कई मौके पर तो ये आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े भी। ऐसे मौक़ों पर जाति ने नहीं बल्कि वर्ग ने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और अंग्रेज़ों के खिलाफ गोलबंद किया। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि कई बार कई आदिवासी क्षेत्रों में एक ही समय पर बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसक संघर्ष भड़का। इसमें उन्हें असफलता भी मिली और कई गांव से बाहरी लोगों को खदेड़ दिया गया और अपनी ज़मीन पर फिर उनका कब्जा हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि औपनिवेशिक शासन के अधिकारियों से भी उनका संघर्ष शुरू हुआ और इस तरह आदिवासियों की लड़ाई सशस्त्र विद्रोह की शक्ल अख्तियार करती गई। ऐसे मौक़ों पर कई बार आदिवासियों के बीच ओझाओं जैसे धार्मिक और चमत्कारवादी नेता भी उभरे। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और बाहरी लोगों के शिकंजे से उनको मुक्ति दिलाएगा। इन धार्मिक नेताओं ने इस तरह के विश्वास रोपने के बाद आदिवासियों का आह्वान किया कि विदेशी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह में वे सब एकजुट हों। इनमें से ज़्यादातर नेताओं का दावा था कि ईश्वर उनके साथ है और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। वे अक्सर यह दावा भी करते थे कि उनके पास जादुई ताकत भी है जिससे वे दुश्मन की गोलियों को भी बेअसर कर सकते हैं। इससे आदिवासियों में आशा और विश्वास की ऐसी लहर फैली कि वे आखिरी सांस तक अपने नेता के साथ लड़ने को तैयार हो गए। ब्रिटिश सेना और आदिवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष पूरी तरह दो गैर बराबर पक्षों के बीच का संघर्ष था। एक तरफ तो आधुनिकतम हथियारों से लैस फौज और दूसरी तरफ पत्थर, आरी, भाले और तीर धनुष लिए जूझते बहादुर आदिवासी पुरुष और औरतें जिन्हें यह विश्वास था कि उनके नेता के पास ईश्वरीय ताकत है। गैर बराबरी के इस युद्ध में लाखों की संख्या में आदिवासी मारे गए।